مکابیین کی پہلی کتاب، ساتواں باب،
دیمیتریوس اور الکیموس۔ سن 151 میں دیمیتریوس بن سلوکس روما سے چھوٹ کر تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ ایک ساحلی شہر کو آیا اور اس نے وہاں سے سلطنت کرنا شروع کیا۔ جب وہ اپنے آبائی دارالحکومت میں داخل ہوا تو لشکر نے انتاکس اور لوسیاس کو گرفتار کر لیا تاکہ دونوں اس کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس نے یہ خبر پا کر کہا کہ مجھے ان کا منہ ہرگز نہ دکھانا۔ اس پر لشکر نے انہیں قتل کر دیا اور دیمیتریوس نے اپنے تخت سلطنت پر جلوس فرمایا اور اسرائیل سے بعض خبیث اور بے دین آدمی اس کے پاس آئے۔ ان کا پیشوا الکیموس تھا جو یہ لالچ کرتا تھا کہ میں کاہن اعظم بن جاؤں، اور انہوں نے بادشاہ کے حضور امت پر الزام لگایا اور کہا کہ یہودا اور اس کے بھائیوں نے تیرے تمام خیرخواہوں کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں ہمارے وطن سے خارج کر دیا ہے۔ اب کسی ایسے شخص کو جس پر تیرا اعتبار ہے بھیج تاکہ جا کر اس ساری بربادی کو دیکھے جو وہ ہم پر اور شاہی علاقے پر لایا ہے، اور انہیں موا ان کے سب مددگاروں کے سزا دے۔ تب بادشاہ نے اپنے مصاحبوں میں سے بخدیس کو منتخب کیا جو عبر کا حاکم اور امیر الدولت اور بادشاہ کا مخلص تھا۔ اس نے اسے بے دین الکیموس کے ساتھ، جسے اس نے کاہن اعظم بھی ٹھہرایا، بھیجا اور اسے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے انتقام لے۔ پس وہ روانہ ہوئے اور بھاری لشکر لے کر یہودا کی سرزمین میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے یہودا اور اس کے بھائیوں کے پاس قاصد بھیجے جو مکر سے صلح کی باتیں کریں، لیکن انہوں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ کی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بھاری لشکر لے کر آئے ہیں۔ لیکن فقیہوں کا ایک وفد الکیموس اور بخدیس کے پاس حق کی دریافت کرنے گیا، اور حسیدی جو بنی اسرائیل میں شرف رکھتے تھے صلح کی بات کرنے لگے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہارون کی نسل میں سے ایک کاہن اس لشکر کے ساتھ آیا ہے، بس وہ ہمیں دھوکہ نہ دے گا۔ اس نے ان کے ساتھ صلح کی باتیں کی اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ ہم نہ تم سے اور نہ تمہارے ہم خیالوں سے بدسلوکی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا یقین کر لیا، لیکن اس نے ان میں سے 60 آدمیوں کو گرفتار کر کے ایک ہی دن میں قتل کرا دیا، جیسا لکھا ہے کہ انہوں نے تیرے مقدسوں کا گوشت بکھیر دیا ہے اور ان کا خون یروشلم کے گرد بہا دیا ہے، اور کوئی نہیں پایا گیا جو انہیں دفن کرے۔ تب ان کا خوف اور رعب تمام امت پر پڑا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس نہ سچائی اور نہ انصاف ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد اور وہ قسم جو انہوں نے کھائی تھی توڑ دی ہے۔ बाद इसके बख्तीस ने यरूशलेम से कूच करके बैतेजीत में डेरा लगाया, जहां से उसने आदमियों को भेजकर बहुत से ऐसे लोगों को जो उससे जुदा हो गए थे और उम्मत में से बाज को पकड़वाया और कत्ल करवा दिया और बड़े घड़े में फेंकवा दिया। तब उसने सूबे को अल्कीमूस के सुपुर्द कर दिया और उसकी मदद के लिए एक फौज उसके पास छोड़ दी। और बख्तीस बादशाह के पास वापस गया और अल्कीमूस बहुत कोशिश करता रहा कि काहन आजम माना जाए, और वो सब जो लोगों को सताते थे उसके पास जमा हो गए। उन्होंने यहूदा की सरजमीन पर गलबा किया और इसराइल पर बड़ी तकलीफ लाई। और यहूदा ने जब उस सारी शरारत को देखा जो अल्कीमूस और उसके साथी गैर कौमों से भी बढ़कर बनी इसराइल में करते थे, तो उसने यहूदिया की तमाम हदूद में गश्त करके तारिकों से इंतकाम लिया और उन्हें मुल्क में फिरने से रोका। और जब अल्कीमूस ने देखा कि यहूदा और उसके साथी जोर पकड़ते जाते हैं और कि मैं उनके सामने कायम नहीं रह सकता, तो वो बादशाह के पास लौटा और उन पर सख्त जराइम का इल्जाम लगाया।
योमे नीकानूर। इस पर बादशाह ने नीकानूर को भेजा, जो उसके खास सिपा सलारों में से एक था और इसराइल का सख्त दुश्मन था, और उसे हुक्म दिया कि उम्मत को हलाक करे। जब नीकानूर बड़े लश्कर के साथ यरूशलेम के सामने आया, तो उसने यहूदा और उसके भाइयों के पास पुरमकर पैगामे सुलह भेजा, यानी के मेरे और तुम्हारे दरमियान लड़ाई ना हो, मैं फक्त चंद आदमियों को साथ लेकर आऊंगा कि तुमसे दोस्ताना मुलाकात करूं। और वो यहूदा के पास आया और उन्होंने सुलह के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल किया, लेकिन दुश्मन तैयार थे कि यहूदा को पकड़ कर ले जाएं। और यहूदा को मालूम हो गया कि ये मकर से मिलने को आए हैं, और इसलिए उससे खबरदार होकर फिर मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जब नीकानूर ने देखा कि मेरी मशवरत जाहिर हो गई है, तो उसने यहूदा के खिलाफ कूच करके कफर सलामा के नजदीक उस पर हमला कर दिया। लेकिन नीकानूर के लश्कर के तकरीबन 500 आदमी मारे गए और बाकी शहरे दाऊद को भाग गए। इन वाकयात के बाद नीकानूर कोहे सहून पर जा चढ़ा और मुकद्दस मकाम से बाज काहिन और बुजुर्गाने कौम निकले ताकि उसे सलाम कहें, और जो सोखनी कुर्बानी बादशाह के लिए गुजरानी जाती थी उसे दिखाएं। लेकिन उसने उनसे ठट्ठा किया और उनकी हंसी उड़ाई, यहां तक कि उसने उन्हें बेहुर्मत किया और उनसे गुस्ताखाना सलूक किया, और गजबनाक होकर कसम खाई और कहा कि अगर यहूदा मां उसके लश्कर के इस वक्त मेरे हवाले ना किया जाए, तो मैं जब फतह याब होकर लौटूंगा तो उसी वक्त इस घर को जला दूंगा। और वो बहुत खफा होकर चला गया। इस पर काहिन अंदर गए और मज़बा और हैकल के सामने खड़े होकर रोने और दुआ करने लगे कि तूने ही इस घर को चुना ताकि इसमें तेरा नाम लिया जाए और तेरी उम्मत के लिए दुआ और फरियाद का मकान हो। बस तू इस आदमी से मां इसके लश्कर के ये इंतकाम ले कि ये सब तलवार का शिकार हो जाएं। उनकी कुफर गोयां याद फरमा और उन्हें बाकी रहने ना दे। नीका नूर यरूशलेम से उठकर बैत हिरून में खैमा जन हुआ, जहां सूर्या का एक लश्कर उसके साथ आ मिला और यहूदा ने 3,000 आदमियों के साथ अदासा के नजदीक डेरा किया। और यहूदा ने यह कहकर दुआ की कि जब शाह अशूर के कासिदों ने कुफर गोई की तो तेरे फरिश्ते ने खरूज करके उनमें से 1,85,000 आदमियों को मार डाला। इसी तरह आज भी हमारे देखते देखते इस लश्कर को शिकस्त दे ताकि दूसरे जान लें कि इसने तेरे मकदिस के खिलाफ बद कलामी की, तो इसकी बुराई के मुताबिक इस पर फतवा डाल और अजार महीने की 13वीं तारीख को दोनों लश्कर लड़ाई में जुट गए और नीकानूर के लश्कर को शिकस्त हुई और सिपा सलार खुद भी हलाक हो गया। जब नीकानूर के लश्कर ने देखा कि वो मारा गया है तो उन्होंने हथियार डाल दिए और भाग गए। और यहूदियों ने अदासा से लेकर एक दिन की राह जाजर तक उनके पीछे पीछे नकारे के नरसिंगे फूंकते हुए उनका ताकुब किया। और हर तरफ से यहूदिया के कस्बों में से लोग निकले और उन्हें नरखे में लिया, तो वो मुड़कर एक दूसरे पर जा पड़े और सब के सब तलवार से कत्ल हो गए, यहां तक कि उनमें से एक भी ना बचा। उनकी लूट और गनीमत ले ली गई और नीकानूर का सर और उसका वो दाहिना हाथ जो उसने तकब्बुर से बढ़ाया था काटे गए और साथ ले लिए गए और यरूशलेम के मुकाबिल लटकाए गए। और लोग नहायत खुश हुए और उस दिन को बड़ी शादमानी के दिन के तौर पर मनाया। और ये दस्तूर ठहराया गया कि हर साल ये दिन आजार महीने की 13वीं तारीख को मनाया जाए। और यहूदा का मुल्क कुछ अरसे तक पुर अमन रहा।